एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कृति जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन को, आप कह सकते हैं, दुनिया के नक्शे पर एक नई जगह दिलाई। मैं बात कर रहा हूँ अरुंधति रॉय के पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की।
हाँ बिल्कुल, 1997 में आई थी ये किताब और आते ही छा गई, बुकर प्राइज मिला उसी साल और अरुंधति रॉय का नाम मतलब रातों रात हर कोई जान गया।
सही, और सिर्फ प्राइज की बात नहीं है, इस उपन्यास की भाषा, कहानी कहने का जो अंदाज है और जिस तरह से ये भारतीय समाज की, खासकर केरल की जो जटिलताएं हैं, जाति व्यवस्था, पाखंड, उन पर बात करता है, वो कमाल है।
एकदम, रॉय खुद केरल में पली बढ़ी तो वो अनुभव आपको हर पन्ने पर महसूस होता है, बिल्कुल अंदर तक बुना हुआ सा।
हाँ, तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनना सुनाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कहानी के अंदर उतरें, वो जो किरदारों के जज्बात हैं, जो मुख्य विचार हैं कहानी के, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है, उनको समझें।
सही, कैसे? मतलब एक परिवार की कहानी, एक जगह की कहानी बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों से जुड़ जाती हैं।
बिल्कुल, तो कहानी का जो वक्त है वो है 1969 और 1993 के बीच। जगह है केरल का आइमनम कस्बा और कहानी घूमती है एक सीरियाई ईसाई परिवार, आइप परिवार के इर्द गिर्द।
तो फिर चलें आइमनम, शुरुआत करते हैं 1993 के माहौल से। सोचिए, एक पुराना घर है, आइमनम हाउस, कभी आलीशान रहा होगा शायद, पर अब उसमें वो बात नहीं, उदासी सी छाई है।
वक्त का असर दिखता है।
हाँ, और पास में ही उनका अचार का बिजनेस, पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स, वो भी जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। ये जो बाहर का बिखराव है ना, वो घर के अंदर जो इमोशनल उथल पुथल है, उसी का अक्स लगता है।
और इसी माहौल में सालों बाद राहिल लौटती है, 31 साल की। उसका जुड़वा भाई एस्था, वो भी वहीं है, पर वो खामोश है।
खामोश, एकदम चुप, एक गहरी चुप्पी जो उसने खुद ओढ़ ली है, और ये चुप्पी जुड़ी है 23 साल पहले हुई किसी भयानक घटना से।
घर में अब सिर्फ बड़ी चाची हैं बेबी को चम्मा, अब बूढ़ी हो चुकी हैं और अपनी कड़वाहटों के साथ जी रही हैं। तो ये जो 1993 का सीन है, ये हमें सीधा उस अतीत की दहलीज पे खड़ा कर देता है जिसने इन लोगों की जिंदगी को यहाँ पहुंचाया है।
और इस उपन्यास की खास बात है इसका स्ट्रक्चर, कहानी सीधी नहीं चलती, कभी 1969 में, कभी 1993 में, जैसे यादें होती हैं ना।
हाँ बिल्कुल, टुकड़ों में आती हैं, कोई भूली बात याद आ गई, कोई तस्वीर आंखों के सामने आ गई, अतीत का साया वो हमेशा रहता है।
और इस अतीत के दिल में है वो नियम, समाज के नियम, जिन्हें रॉय प्रेम के नियम कहती हैं। बड़े बेरहम नियम हैं ये।
हाँ, लव लॉज, जो तय करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए और कैसे और कितना। क्या कमाल की लाइन है ये। और यही नियम इस कहानी के सारे संघर्ष, सारी ट्रेजेडी की जड़ है।
तो कहानी हमें ले जाती है 1969 के दिसंबर में, दो हफ्ते का समय है वो, घर में एक अजीब सी हलचल है।
हलचल क्यों है?
क्योंकि घर के बेटे हैं चोको, बच्चों के मामा, उनकी अंग्रेज एक्स वाइफ मार्गरेट और उनकी बेटी सोफी मोल, वो इंग्लैंड से आ रहे हैं। तो एक एक्साइटमेंट भी है पर एक टेंशन भी।
अच्छा, और यही हमें परिवार के अंदर की बातें पता चलती हैं।
हाँ, परतें खुलती हैं। बच्चों की माँ है अम्मू, तलाक हो चुका है, मायके में है, एक तरह से बेबस, उसमें हताशा है। चोको है ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, थोड़ा दम है उसमें। नानी है मम्माची, वो सामाजिक रस्मों रिवाजों में जकड़ी हुई, और है बेबी को चम्मा, बड़ी चाची, उनकी आंखों में अम्मू और उसके बच्चों के लिए एक अजीब सी जलन दिखती है, नाराजगी।
बिल्कुल, और इसी माहौल में एक और कहानी चुपके चुपके पनप रही होती है, अम्मू और वेलुथा के बीच। वेलुथा जो उनके अचार कारखाने में काम करता है, बहुत हुनरमंद कारीगर है, पर वो अछूत परवन जाति से हैं।
हाँ, और उनका ये रिश्ता, ये समाज के उन प्रेम के नियमों को सीधी चुनौती है।
वो लोग मीनाचल नदी के किनारे छिपकर मिलते हैं, दुनिया से बचकर। शायद वो पल उनके लिए जिंदगी की घुटन से कुछ देर की राहत हो।
राहत तो है, पर यही पल आने वाली तबाही की वजह भी बन रहे हैं।
किरदारों की बात करें अगर,
हाँ,
तो अम्मू का किरदार तो बहुत अहम है।
बिल्कुल, दुखद किरदार है, ट्रैजिक हीरोइन कह सकते हैं। एक बुरी शादी से बचकर मायके आई, पर यहाँ भी इज्जत नहीं, आजादी नहीं, एक तरह की निर्भरता है।
वो स्मार्ट है, जिंदा दिल है, उसमें आग है, पर समाज ने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी।
और वेलुथा से उसका प्यार वो सिर्फ जिस्मानी खिंचाव नहीं है, शायद वो अपनी पहचान, अपनी खुशी पाने की एक बहुत ही डेस्परेट मगर खूबसूरत कोशिश है।
लेकिन समाज कहाँ ये हक देता है? उसका प्यार तो एक खुली बगावत बन जाता है, और ऐसी बगावत समाज को मंजूर नहीं। सही कहा, उसकी कहानी विद्रोह से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है सजा, अकेलेपन और मौत पर। और दूसरी तरफ वेलुथा, जिसे नॉवल में छोटी चीजों का देवता कहा गया,
द डेविड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
ये टाइटल भी उसी से जुड़ा है।
हाँ,
वो परवन जाति का है जिसे समाज नीची नजर से देखता है, पर उसमें हुनर है, दया है, बच्चों से उसका लगाव बहुत खास है, निश्चल।
उनके लिए लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाता है वो, उन्हें हंसाता है वो, जैसे कुदरत की अच्छाई का, जिंदगी की छोटी सच्ची खुशियों का प्रतीक है।
और अम्मू के लिए उसका प्यार वो सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं रहता, वो आइमेनम का जो जहरीला सोशल स्ट्रक्चर है ना, उस पर सीधी चोट करता है।
बिल्कुल, और इसीलिए वो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है।
कहानी का सबसे बड़ा अन्याय उसी के साथ होता है,
क्योंकि उसका होना ही नियमों को तोड़ना है।
और फिर बच्चे, जुड़वा बच्चे, एस्था और राहिल, वो तो इस कहानी का दिल हैं। 7 साल के हैं, जैसे एक ही रूह के दो जिस्म।
उनकी अपनी दुनिया है, अपनी भाषा। एस्था थोड़ा संजीदा, सेंसिटिव, राहिल थोड़ी ज्यादा अलहड़सी, दुनिया को अपनी नजरों से देखती है। उसकी वो चोटी लव इन टोक्यो में, फवारा,
हाँ याद है उनकी कहानी,
मासूमियत के कुचले जाने की कहानी है, सोफी मॉल की मौत,
और उसके बाद जो होता है,
खासकर वो वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही देने का दबाव, वो उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ देता है, उनका वो जुड़ाव वो बिखर जाता है।
और एस्था को उसके पापा के पास वापस भेज दिया जाता है, रिटर्न्ड, जैसे कोई चीज हो। ये शब्द ही कितना कुछ कहता है, और वो खामोश हो जाता है
हमेशा के लिए। राहिल बड़ी होती है, पर उसकी जिंदगी में भी एक बेचैनी रहती है, एक भटकाव।
इस सब में परिवार के बाकी लोगों का भी रोल है। बेबी को चुम्मा, बच्चों की बड़ी चाची, वो शायद इस कहानी की विलेन है।
हाँ, कह सकते हैं। जवानी में एक पादरी से एक तरफा प्यार था उनका, जो पूरा नहीं हुआ, और उसकी कड़वाहट ने जैसे उनके पूरे वजूद को जहरीला कर दिया है।
वो धर्म का दिखावा करती हैं, पर अंदर से भरी हैं कुंठा, जलन, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा से।
और वही हैं जो वेलुथा के खिलाफ झूठी कहानी बनाती हैं, बच्चों को डरा कर, धमका कर, उनसे वो गवाही दिलवाती हैं। बहुत क्रूर है ये।
ये सिर्फ वेलुथा के साथ अन्याय नहीं है, ये अम्मू और उन बच्चों के भविष्य को भी तबाह कर देता है। फिर चौको है अम्मू का भाई, ऑक्सफोर्ड रिटर्न,
अंग्रेजियत का रौब झाड़ने वाला, पर अंदर से खोखला, पाखंडी।
हाँ, उसका पाखंड देखो, अचार कारखाने की औरतों से उसके रिश्ते, वो आदमी की जरूरतें हैं, मेंस नीड्स, लेकिन अपनी बहन का प्यार वो गुनाह है।
वो सोफी मॉल से तो बहुत प्यार करता है अपनी बेटी से, पर अम्मू और उसके बच्चों की तकलीफ उसे नजर ही नहीं आती, और आखिर में उसकी चुप्पी, उसकी कायरता, वो भी उसे इस त्रासदी में हिस्सेदार बना देती है।
अब आते हैं उस दिन पर, वो भयानक दिन जब सब कुछ बिखर गया।
परिवार गया था सिनेमा देखने, द साउंड ऑफ म्यूजिक। लगता है जैसे सब नॉर्मल है, पर वहीं सिनेमा हॉल में एस्था के साथ वो घटना होती है, वो वेंडर, ऑरेंज ड्रिंक, लेमन ड्रिंक।
हाँ, वो यौन शोषण, बच्चे के मन पे कितना गहरा असर हुआ होगा उसका, वो समझ भी नहीं पाया होगा शायद।
घर लौटते हैं तो माहौल और खराब, अम्मू अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी घुटन बच्चों पर निकाल देती है, उन्हें कहती है कि तुम लोग मेरी गर्दन का चक्की का पार्ट हो, मिलस्टोन्स।
उफ, बच्चों के लिए ये सुनना बर्दाश्त से बाहर है। दुखी होकर वो घर से भाग जाते हैं, नदी पार, इतिहास का घर जाने का सोचते हैं, वो पुराना वीरान सा घर जहां वेलुथा कभी कभी जाता है।
सोफी मोल भी जिद करती है साथ चलने की,
और रात का वक्त, नदी पूरे उफान पर, उनकी नाव, छोटी सी नाव, पलट जाती है।
एस्था और राहिल तो तैर कर बच जाते हैं जैसे तैसे, पर सोफी मोल, वो बेचारी तैरना नहीं जानती थी, नदी के बहाव को नहीं समझ पाई, वो डूब जाती है।
यह हादसा था, मगर इसके बाद जो हुआ वो हादसा नहीं था, इज्जत बचाने के लिए और अम्मू से बदला लेने के लिए
वो पुलिस के पास जाती है और कहानी गढ़ देती है कि वेलुथा ने बच्चों को अगवा किया था, सोफी की मौत का जिम्मेदार वही है, वो वेलुथा पर और अम्मू पर हमला करने का झूठा इल्जाम भी लगा देती है।
और चौको अपनी बेटी की मौत के सदमे में है, अपराध बोध में है। बेबी कोचम्मा उसे भी इस झूठ में शामिल कर लेती है। कहती है यही तरीका है परिवार को बचाने का।
पुलिस तो पहले से ही जाति को लेकर पूर्वाग्रह रखती है। वो बेबी कोचम्मा की कहानी पर फौरन यकीन कर लेती है
और वो वेलुथा को पकड़ते हैं इतिहास के घर से और बिना कुछ पूछे बिना सबूत के उसे मारते हैं जानवरों की तरह। ये उपन्यास में स्टेट और समाज की जातिगत हिंसा का सबसे कच्चा चिट्ठा है।
और उधर बेबी कोचम्मा उन 7 साल के बच्चों को एस्था और राहील को जो खुद सदमे में हैं डरे हुए हैं उन्हें धमकाती है।
क्या कहती है?
कहती है कि अगर तुमने पुलिस को नहीं बताया कि वेलुथा ही दोषी है तो तुम और तुम्हारी माँ अम्मू जेल जाओगे। बच्चे बेचारे क्या समझें, डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
और एस्था पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वेलुथा की तरफ इशारा कर देता है। रॉय यहाँ 82 ब्रूटे का जिक्र करती हैं, वो शेक्सपियर वाला सीजर का धोखा, एक बच्चे का अनजाने में किया गया विश्वासघात।
और बस उस एक इशारे ने वेलुथा की मौत लिख दी। वो उसी रात पुलिस कस्टडी में मर जाता है चोटों की वजह से, एक बेगुनाह मार दिया जाता है।
सिस्टम की क्रूरता, समाज के पूर्वाग्रह, सबने मिलकर उसे मार डाला।
इसके बाद आई पर परिवार, वो परिवार रहता ही नहीं, बिखर जाता है पूरी तरह। चौको अपनी ही बहन अम्मू को पहले कमरे में बंद करता है फिर घर से निकाल देता है।
और अम्मू उसका क्या होता है?
वो कुछ साल बाद एक सस्ते से होटल में अकेली टूटकर मर जाती है।
ओ, और एस्था?
एस्था वो उस इशारे के बोझ तले दब जाता है, वो खामोश हो जाता है हमेशा के लिए। उसे कलकत्ता भेज दिया जाता है उसके पिता के पास।
वापस
रेहेल से अलग।
23 साल?
23 साल तक दोनों अलग रहते हैं। उनके बीच खामोशी और दर्द की एक दीवार खड़ी हो जाती है।
कहानी फिर लौटती है 1993 में। एस्था और रेहेल अब 31 के हैं, फिर मिलते हैं।
हाँ, उनका साथ आना जैसे अतीत के सारे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा कर देता है।
वो 21 सिक्के के दो पहलू हैं। उस 1969 की त्रासदी ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है, घायल कर दिया है।
नॉवेल के आखिर में एक रात वो दोनों जिस्मानी तौर पर एक हो जाते हैं। ये पढ़ना थोड़ा असहज करता है, पर शायद ये वासना नहीं है।
नहीं, शायद ये उनका गहरा अकेलापन है। वो जो साझा दर्द है उसमें एक दूसरे में सुकून खोजने की एक बहुत ही हताश दुखद कोशिश है। ये अपने आप में एक और नियम तोड़ना है, एक और उल्लंघन जो उनके अकेलेपन को और गहरा दिखाता है।
लेकिन रॉय कहानी को यहाँ खत्म नहीं करती, वो हमें एक बार फिर अतीत में ले जाती हैं।
कहाँ?
उस रात में जब अम्मू और वेलुथा आखिरी बार मिले थे नदी किनारे, दुनिया की नज़रों से दूर, उनके प्यार का वो एक पल, बिल्कुल शुद्ध बेखौफ, जैसे रॉय कहना चाहती हो कि दुनिया ने भले ही उस प्यार को कुचल दिया पर वो पल, वो एहसास, वो सच्चा था, वो ताकतवर था।
ये उपन्यास इसमें कई पढ़ते हैं, बहुत गहरे विषय हैं। सबसे बड़ा तो वही है, जाति व्यवस्था, और वो प्रेम के नियम।
आईमेनम की दुनिया में हर चीज, हर रिश्ता, हर बात इन्हें नियमों से चलती है। अम्मू और वेलुथा का प्यार इन नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन है और उसका अंजाम वो दिखाता है कि ये नियम कितने हिंसक हैं।
रॉय का सवाल सीधा है, कौन तय करेगा कि किसे प्यार करना है, कैसे करना है, कितना करना है?
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है निषिद्ध प्रेम का थीम, प्रोहिबिटेड लव। अम्मू वेलुथा का प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, वो एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक विद्रोह।
और फिर बड़े होकर जुड़वां भाई बहन का वो रिश्ता, वो भी एक उल्लंघन है। वो सामाजिक नियमों से ज्यादा शायद मनोवैज्ञानिक सरहदों को तोड़ता है। हमें इंसानी रिश्तों की बहुत उलझी हुई, कभी कभी डिस्टर्ब करने वाली हकीकतों से रूबरू कराता है।
मासूमियत का खोना, वो तो कहानी की आत्मा है। ये बचपन के खत्म होने की कहानी है। वो 1969 की घटनाएं बच्चों की दुनिया तबाह कर देती हैं।
एस्था की खामोशी उस ट्रॉमा का सबसे बड़ा सबूत है। उपन्यास ये भी दिखाता है कि बचपन के जख्म जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते।
और यादें, स्मृति, इतिहास, कहानी का वो आगे पीछे जाना, वो दिखाता है यादें कैसे काम करती हैं, कैसे अतीत कभी मरता नहीं।
पर्सनल हिस्ट्री, परिवार के राज, दबे हुए सच, वो केरल के बड़े इतिहास से टकराते हैं, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट का जिक्र आता है। रॉय पूछती हैं कि क्या हमारी निजी कहानियां कभी इतिहास से अलग हो सकती हैं?
और पाखंड, सोशल हिपोक्रेसी, आई परिवार तो जैसे पूरे समाज का एक छोटा मॉडल है। चौको की जरूरतें ठीक हैं पर अम्मू की इच्छाएं गुनाह, बेबी को चम्मा का धर्म का नकाब, ये पाखंड त्रासदी को और ज्यादा भयानक बना देता है।
हाँ, और आखिर में वो बात जो इस उपन्यास को इतना खास बनाती है, छोटी चीजों का महत्व।
The God of Small Things।
हाँ, दुनिया पर राज करती हैं बड़ी चीजें, इतिहास, जाति, धर्म, राजनीति, पर रॉय हमारा ध्यान खींचती हैं छोटी चीजों पर। एक नजर, एक स्पर्श, लकड़ी का खिलौना, दया का एक लम्हा।
विलुथा छोटी चीजों का देवता है, क्योंकि वो इन्हीं में जीता है, इन्हीं को बनाता है। त्रासदी ये है कि ये बड़ी दुनिया इन छोटी नाजुक चीजों की खूबसूरती को, इनकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
नॉवल में वो लाइन है ना, ऐसे समय में केवल छोटी बातें ही कही जाती हैं, बड़ी बातें अनकही अंदर छिपी रहती हैं।
उफ, क्या बात है। और ये सब कुछ अरुंधति रॉय की भाषा के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। वो भाषा जैसे जादू है।
हाँ, पोएटिक है, लय है उसमें, इंद्रियों को जगाती है। वो ग्रामर के रूल तोड़ती हैं, शब्दों को नया मतलब देती हैं, जैसे वो ऑरेंज ड्रिंक, लेमन ड्रिंक, मैन, कैपिटल लेटर्स में, वाक्यों की बनावट से खेलती हैं।
और कुछ खास फ्रेज बार बार आते हैं, जैसे म्यूजिक में कोई मोटिफ हो। ये स्टाइल हमें सीधा बच्चों की नजरों से दुनिया दिखाता है, केरल के उस माहौल में डुबो देता है।
और कहानी का वो नॉन लीनियर तरीका, वो पाठक को हमेशा अलर्ट रखता है, एक रहस्य बना रहता है, एक एहसास के कुछ बुरा होने वाला है, पर क्या और कैसे वो धीरे धीरे खुलता है।
और सिंबल्स, प्रतीक, उपन्यास भरा पड़ा है उनसे। पप्पाची का वो पतंगा, पप्पाचीज मौत, एक अनजाना डर, अतीत का बोझ,
मीनाचल नदी, जीवन भी, मौत भी, प्यार भी, तबाही भी, पैराडाइज पिकल्स, परिवार का, परंपरा का सड़ना,
वो नीली प्लाईमाउथ कार, वेस्टर्न मॉडर्निटी का सपना जो आखिर में हार जाता है। ये सिंबल्स कहानी को और भी गहरे मायने देते हैं।
वाकई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपको हिला देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समाज के बनाए हुए ढांचे, खासकर जाति जैसी चीजें, इंसानी जिंदगी को कुचल सकती हैं।
और कैसे प्यार, बगावत, यादें, भले ही उन्हें दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, फिर भी वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें छोटी चीजों की उस अनदेखी ताकत की याद दिलाती है जो बड़ी और बेरहम दुनिया के शोर में अक्सर खो जाती हैं। और ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।